Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः। मित्रों, एक व्यक्ति गुरु नानक देव जी के पास पहुंचा और उसने कहा कि गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि जीवन का मूल्य क्या है। गुरु नानक देव जी ने उन्हें एक पत्थर दिया और कहा कि तुम जाओ बाजार में, इसकी कीमत आंक के आओ, पूछ के आना कि क्या है इस पत्थर की कीमत, लेकिन हाँ, इसे तुम बेचना मत। वो व्यक्ति चला गया। वो व्यक्ति एक ठेले वाले के पास पहुंचा जो संतरे बेच रहा था। उस व्यक्ति ने दिखाया ये जो स्टोन दिया था गुरु नानक देव जी ने, कहा कि बताओ इसकी कीमत क्या होगी, या ये मैं तुम्हें देता हूँ तो तुम इसके बदले मुझे क्या दे सकते हो। तो संतरे वाले ने कहा कि चमकीला था वो पत्थर, कहा ठीक है, तुम इसे मेरे पास दे सकते हो, लेकिन इसके बदले मैं केवल तुम्हें 12 संतरे दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। वो व्यक्ति आगे चला गया, एक सब्जी वाले के पास गया। वो सब्जी वाले को दिखाया कि इस पत्थर की कीमत क्या होगी। उसने कहा इस पत्थर की कीमत एक बोरे आलू के समान होगी, तुम एक बोरा आलू ले जाओ, ये पत्थर तुम मुझे दे सकते हो। लेकिन व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मेरे गुरुदेव ने इसे बेचने के लिए मना किया है, बस मैं इसकी कीमत जानना चाहता हूँ। एक सुनार की दुकान में पहुंचा, सुनार ने उसे देखा, सुनार ने कहा कि मैं इस पत्थर के तुम्हें 50 लाख दे सकता हूँ। लेकिन व्यक्ति, चूंकि उसे बेचना नहीं था, बस कीमत जाननी थी, वो व्यक्ति आगे जाने लगा, लेकिन सुनार ने कहा कि चलो मैं तुम्हें 2 करोड़ दे दूंगा, लेकिन ये पत्थर तुम मुझे दे दो। लेकिन व्यक्ति चला गया। एक जौहरी के पास जब वो गया जो हीरे की परख रखता था, उस जौहरी ने जब वो देखा तो उसने एक लाल सा एक चादर बिछाया, उसके ऊपर उस पत्थर को रखा और अपना सिर झुकाया और कहा कि ये बेसकीमती जो रूबी है वो तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ। तो उसने सारी बातें बताई कि गुरु नानक देव जी ने ये मुझे दिया है। तो उस जौहरी ने कहा कि इस रूबी की कीमत हो ही नहीं सकती, मतलब ये बेसकीमती है। व्यक्ति वापस लौट के गया और सारी जो भी बातें हुई थी गुरु नानक देव जी को उन्होंने बताया और कहा कि लेकिन ये जो मैंने प्रश्न किया था गुरुदेव, उसके उत्तर से ये कैसे जुड़ा हुआ है कि जीवन का मूल्य क्या है। तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि देखो, जीवन के मूल्य को हर एक व्यक्ति अपने अपनी सोच, अपने अपने कर्म के आधार पे ही निर्धारित करता है। किसने जीवन को क्या समझा है, कोई ये समझता है कि केवल खाने पीने सोने का नाम ही जीवन है, उसके लिए शायद ये 12 संतरे या एक बोरी आलू के समान ही है ये जीवन। लेकिन जो ये समझता है कि ये जीवन प्रभु की अमूल्य उपहार है और इसे मुझे परमात्मा की याद में और साथ ही मानवता की सेवा में लगाना है, वही व्यक्ति वास्तव में इस जीवन की वास्तविक कीमत को आंकता है और वही संसार से के जाने के बाद भी लोग उसे याद रखते हैं। ये है वास्तव में जीवन का मूल्य। हर एक जी रहा है, लेकिन जिस ढंग से वो जी रहा है उसकी स्टाइल अलग अलग है। इसीलिए तुम अपने जीवन को बेहतरीन और बेसकीमती बना सकते हो यदि तुम मानवता की सेवा में इसे लगाते हो तो। बहुत ही सुंदर जीवन के मूल्य को बताने वाली प्रेरक कथा थी मित्रों, जो गुरु नानक देव जी ने उस व्यक्ति को बताई। आप भी इस पे विचार कीजिएगा। ऐसे सुंदर प्रसंग के साथ, कथा के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। प्रता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
थैंक यू।
जीवन के मूल्य के लिए प्रता जी, अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से इसे देखते हैं, अलग अलग ढंग से अपने अपने ढंग से जीते हैं, लेकिन बेहतरीन ढंग क्या हो ये गुरु नानक देव जी ने कहे।
देखिए, शरीर की बहुत वैल्यू है। किसने कहा 1 करोड़ देता हूँ, एक दायां हाथ आप मुझे दे दो। उसने कहा कैसे दे दूंगा, दायां हाथ दे दो तुम 1 करोड़ में। किसने कहा दांतों की कीमत तो 10,000 रुपए है, 10 लाख रुपए है। किसने आंखों की कीमत, आंखी ये तो देह है, लेकिन जब इसमें आत्मा विद्यमान है, विराजमान है, तो ये जीवन सचमुच बहुमूल्य है। और जो मनुष्य अपने जीवन की कीमत को समझता है वो खुद भी बहुत महान बन जाता है, उसके द्वारा कार्य भी बहुत महान होते हैं। बहुत लोग अपने जीवन के मूल्य को स्वयं नहीं जानते हैं, इसलिए वो कुछ भी खाते पीते हैं, किसी भी गलत राह पे चलते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, और अंततः उनका जीवन कष्टों से भरा होता है। जब उनकी अंतिम समय होता है, अंतिम यात्रा, तो बहुत कष्टदायक होती है। लोग हॉस्पिटलों में पड़े रहते हैं क्योंकि उसने अपने जीवन को वैल्यू खुद नहीं दी थी। अब देखिए, मनुष्य की मेंटेलिटी क्या है, वो चाहता है मुझे सब सम्मान दें, मतलब वैल्यू दें मुझे। लेकिन जब मनुष्य स्वयं के जीवन को स्वयं ही वैल्यू नहीं दे रहा है तो दूसरे उसे वैल्यू कैसे देंगे। ये बात हम सबके साथ बहुत सुंदर ढंग से घटित हुई जब भगवान इस सृष्टि पर आए, धरा पर अवतरित हुए, उन्होंने आते ही हम सबको कहा, तुम साधारण नहीं हो, तुम बहुत महान हो, तुम पूर्वज हो, तुम्हारे वाइब्रेशन सारे संसार का कल्याण करते हैं, तुम्हारी प्योरिटी प्रकृति को बदलने वाली है। हमें महत्व दिलाया हमारी प्योरिटी का, हमारे एक एक विचार का, हमारे एक एक सेकंड का, अर्थात हमारे जीवन का। और जिन्होंने ये चीज स्वीकार कर ली, रियलाइज कर ली, उनका जीवन सचमुच महान बन गया। ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हजारों हैं। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि मनुष्य को अपने जीवन को खुद वैल्यू देनी चाहिए। मैं छोटा सा उदाहरण दूं, मान लो एक विद्यार्थी है, उसको अपने जीवन की वैल्यू है कि मैं 11वीं क्लास में हूँ, 12वीं क्लास में हूँ। अगर वो देखिए अपने उस समय को वैल्यू दे रहा है तो बहुत कुछ कर लेगा। एक व्यक्ति, एक लड़का बीटेक कर रहा है, उसको वैल्यू है कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाने चाहिए, 85%, तो मैं आगे बहुत अच्छा कर सकूंगा, सहज कंपनियां मुझे ले जाएंगी। वो महत्व देता है, अपने जीवन के महत्व को समझता है, अपने समय के महत्व को भी समझता है। उसे पता जीवन में तभी आनंद होगा जब मैं यहाँ इस समय को महत्व देकर अच्छी स्टडी करूंगा। अगर हर मनुष्य इस पे गौर करे, जीवन बहुत मूल्यवान है, इसको यूं ही नहीं व्यतीत कर देना चाहिए, इसकी कीमत तो इन सब चीजों में आंकी नहीं जा सकती, न डॉलर में, न सोने में, न हीरो में, उन सबसे अधिक कीमती है ये, तो सचमुच हमारा देश, हमारा संसार स्वर्ण तुल्य बन जाए।
बिल्कुल, मतलब अपने जीवन के महत्व को सही सही ढंग से समझा जाए। लेकिन भ्राता जी, अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से क्यों इस चीज को देखते हैं?
वही बात, जो उस कीमती पत्थर को देखकर सब्जी वाले ने उसका मूल्य आंका
जी,
और आलू वाले ने भी आंका, और संतरे वाले ने भी, और सुनार ने भी, और फिर जवाहरी ने भी। तो देखिए, एक महान व्यक्ति संसार में हुए, मान लो जीसस आए, 5 शिष्य थे उनके। अब उनमें से किसी ने तो उस महान पुरुष की वैल्यू को ठीक ठीक समझा, किसी ने नहीं समझा, धोखा दिया ना। महात्मा बुद्ध के साथ भी उसके कुछ शिष्य थे, 4 या 5, उनमें से कुछ ने उसके वैल्यू को समझा, कुछ ने नहीं समझा। हर महान व्यक्ति के साथ ये होता है कि उसके महत्व को कुछ लोग जान पाते हैं, कुछ नहीं जान पाते हैं। दूसरे के महत्व को समझने के लिए या अपने जीवन के महत्व को जानने के लिए भी एक श्रेष्ठ बुद्धि का होना आवश्यक है। जिसके पास वो श्रेष्ठ बुद्धि है, वो अपने जीवन के महत्व को या किसी महान व्यक्ति के जीवन के महत्व को अच्छी तरह समझ सकता है, अन्यथा अपनी अपनी बुद्धि अनुसार हर व्यक्ति इसकी कीमत आंक रहा है।
बिल्कुल, तो क्या ये वैसे ही चलते रहेंगे, जीवन के प्रति उनका नजरिया वही रहेगा, महापुरुषों के लिए भी नजरिया वही रहेगा, या फिर कोई परिवर्तन लाया जा सकता है?
बिल्कुल, इसके लिए ईश्वरीय ज्ञान की उन्हें जरूरत होती है, और योग अभ्यास से मनुष्य की बुद्धि डिवाइन बनती है। उसमें वो सूक्ष्म शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जो उसके अंदर छुपी हुई हैं, जो दबी हुई हैं, और जिनके अभाव से कोई भी मनुष्य एक अच्छी चीज को अच्छी दृष्टि से नहीं देख पाता है, जिसके अभाव से मनुष्य अपने जीवन को भी यथार्थ वैल्यू नहीं दे पाता है। तो ये सत्य है कि हम ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं, स्वमान के द्वारा उसकी सोई हुई शक्तियों को जागृत कर सकते हैं।
प्रताप जी, जो व्यक्ति जहाँ पे भी है, चाहे वो गरीब है, वो अमीर है, संसार के किसी भी कोने में है, देश के किसी भी कोने में है, कोई भी व्यवसाय कर रहा है, किसी भी फील्ड में है, हर एक व्यक्ति जहाँ रहता है वो वहीं रम जाता है, और उसकी एक परिधि सी बन जाती है, वो उससे बाहर नहीं सोच पाता, शायद वही उसके लिए जीवन हो जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या उस परिधि के अंतर्गत ही वो रहे, वही उसका जीवन है, या सचमुच हरेक को अपने उस फील्ड से बाहर निकल के कुछ सोचना चाहिए ताकि जीवन के लिए सही सही दृष्टि।
देखिए, एक मजदूर का परिवार है
जी जी,
अब उसमें 3 लोग काम करते हैं, उन्हें मान लो रोज का 100 रुपया मिलता है, तो वो ये सोचते हैं 100 की बजाय अगर 150 मिलने लगे, वाह बड़ा अच्छा हो जाए, हमारी तीनों की कमाई में 150 रुपए वृद्धि हो जाए, हम और अच्छे हो जाएंगे। उसका दायरा उतना ही है। देखिए, एक स्टूडेंट है, वो जिस क्लास में पढ़ रहा है उसमें जितने मार्क्स उसे लेने हैं या आते हैं, या वो किसी कंपटीशन में है, वो उसका दायरा है। एक बिजनेसमैन का दायरा कुछ का लाख का है, कुछ का करोड़ का है, कुछ का उसके भी आगे का है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट का अपना दायरा होता है, लेकिन मनुष्य इन सबसे ऊपर उठ सकता है अगर वो ईश्वरीय ज्ञान ले। और स्वमान जिसकी मैं बात करता हूँ हमेशा, जो बहुत बड़ी चीज है, जो स्मृतियां हैं श्रेय, जिसको जगाने से बहुत कुछ मनुष्य अचीव कर सकता है, यदि उसको स्वमान दिया जाए और वो उसका जग जाए तो उसका दायरा संपूर्ण विश्व कल्याण तक पहुंच सकता है। उसके वाइब्रेशन सारे विश्व को बहुत कुछ दे सकते हैं, उसका धन भी विश्व की सेवा में यूज हो सकता है, उसके टैलेंट्स भी जन कल्याण में प्रयोग हो सकते हैं, उसका परिवार भी बहुत अच्छे कार्यों में लग सकता है। तो दायरे को बढ़ाया जा सकता है, मतलब अनलिमिटेड किया जा सकता है अगर ईश्वरीय ज्ञान हम लें और स्वमान की प्रैक्टिस करें।
तो ये दोनों चीजें सचमुच लगातार आप कहते हैं व्रता जी, लेकिन कई बार व्यक्ति नहीं, उसे लगता है कि नहीं मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ, उससे आगे वो सोचना नहीं चाहता है। मतलब ज्यादातर ये देखा गया है कि हाँ भाई अब परिवार है, ओके सुखी हैं, शांत हैं, इतनी हमारी आमदनी है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, ऐसा चलने दो। ज्यादातर आपको नहीं लगता कि व्यक्ति की मानसिकता ऐसी ही
बहुत है? लोगों की ऐसी ही है
जी,
बिल्कुल दायरा है। इनमें से मतलब लाखों में से कोई एक व्यक्ति इसे बाहर निकलने की सोचता है और जन कल्याण की सोचता है, उसके विचार महान हो जाते हैं, तो ये तो सत्य है
बिल्कुल। तो भ्राता जी एक चीज जो मैं, जिस कारण मैं इसको थोड़ा सा आपसे स्पष्टीकरण ले रहा था, ये कहा गया है हमारे यहाँ शास्त्रों में कि न जाने कितने जन्म लेने के बाद, वैसे तो 84 लाख योनियों की बात कही है, इतनी योनियों में भटकने के बाद अब मनुष्य का जीवन मिला है और मनुष्य का जीवन बहुत मूल्यवान होता है, कीमती होता है, और इसमें वो कर लेना चाहिए जो वास्तव में करना चाहिए, किया जाना चाहिए। संसार के कल्याण की बात हो सकती है, अपने आत्मोत्थान की बात हो सकती है, मुक्ति, जीवन मुक्ति की बात हो सकती है, लेकिन इससे व्यक्ति थोड़ा सा विमुख है आज के दौर में यदि देखा जाए तो लगता है कि क्या सचमुच की कीमत सही सही आंकी जा रही है इस मानव जीवन की?
नहीं, बिल्कुल नहीं आंकी जा रही। नहीं तो अगर लोगों की ये मान्यता भी है कि 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है
जी,
तो सचमुच हर व्यक्ति को अपने जीवन को बहुत कीमत देनी चाहिए, मतलब उसकी कोई गिनती ही नहीं हो सकती। परंतु न वो सत्य है न ये सत्य है। अगर वो सत्य होता कि 84 लाख योनियों से भटक कर हम आए हैं तो मनुष्य में एक जागृति होती, उसका विवेक भी सुंदर होता, क्योंकि वो सब कुछ निगेटिविटी समाप्त कराया भोग के, तो वो भी सत्य नहीं है। भगवान ने बता दिया 84 लाख नहीं, तुम केवल 84 जन्म लेते हो। और इसमें ये जीवन विशेष रूप से जिसकी हम चर्चा करते हैं कि ये कलयुग का एंड और सतयुग के बिगनिंग का समय है, पुरुषोत्तम संगम युग है, और इसमें स्वयं भगवान आकर मनुष्य को एजुकेट कर रहा है मनुष्य से देवता बनाने के लिए। ये जो हमारा जीवन है जिसको हम ब्राह्मण जीवन कहते हैं, ये बहुमूल्य है। और देखिए इसी कारण जो संसार में भी ब्राह्मण रहे उनकी बड़ी मान्यता रही, ये ब्राह्मण जीवन असली ब्राह्मण जीवन है जो भगवान से प्राप्त हुआ, यानी जो ब्रह्मा ने हम सबको जन्म दिया, शिव ने हमें अडॉप्ट किया, हम भगवान के बच्चे और ब्रह्मा के बच्चे बन गए, इसलिए हम ब्राह्मण हुए और हमने ब्राह्मण बनकर वो सब कार्य किए, महान कार्य, विश्व परिवर्तन का कार्य, सबको ज्ञान देने का कार्य, सबको भगवान से मिलाने का कार्य। तो वही प्रथाएं संसार में ब्राह्मणों के रूप में आज तक प्रचलित रही थी। तो जीवन तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और जो लोग इस जीवन में आ गए वो सचमुच अपने जीवन के महत्व को समझने लगे।
तो सार में क्या कहेंगे ब्रदर जी, यदि सारे मानव जाति को या सभी मनुष्यों को जो मनुष्य के तन में है, सर्वोच्च लक्ष्य ये है, सर्वोच्च उद्देश्य ये है, और इसके लिए सबको प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए।
देखिए जो फाइनल बात है जो शास्त्रों से भी आ रही है कि मनुष्य को मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन मुक्ति से पहले इस जीवन में संपूर्ण सफल होना है, जीवन को निर्विघ्न सुख शांति में व्यतीत करना है, अपने को बहुत शक्तिशाली बनाना है, अपने को संपूर्ण रूप से पावन बना देना है, ये हर मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। चाहे वो धर्म के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, चाहे समाज में किसी भी फील्ड में वो जन्मे हैं और कार्य कर रहे हैं, ये चीजें पावन बनना, स्वयं को शक्तिशाली बनाना, सफलता के मार्ग पे चलना, निगेटिविटी का मार्ग छोड़ देना, घर घर में सुख शांति प्रेम और संतोष का माहौल बना देना, ये जन जन का फाइनल लक्ष्य होना चाहिए।
तो क्या इसके लिए व्रता जी संन्यास की आवश्यकता होगी, सब कुछ छोड़ देने की आवश्यकता होगी, गैरवे वस्त्र धारण कर लेने की जरूरत होगी, या वहाँ रह के ही हमें ये करना होगा?
नहीं, हमने चर्चा की हर परिवार को ऐसा बनाना है, संन्यास की बात हमने नहीं की। संन्यास को भी ऐसा ही बनना चाहिए, जो लोग संन्यास ले चुके हैं
जी,
जिन्होंने ग्रह त्याग कर दिया लेकिन जिनका लक्ष्य सचमुच मुक्ति प्राप्त करना था और है, उन्हें ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा अपने को मनोविकारों से मुक्त करना चाहिए। उन्हें अपने मन को पॉजिटिव करके उसको पूर्ण रूप से सशक्त कर देना चाहिए, क्योंकि एक शक्तिशाली मन ही निरसंकल्प हो सकता है। जब तक मन निरसंकल्प स्थिति में नहीं आया तो मुक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। उन्हें अपने कर्मों को भी बहुत महान बनाना पड़ेगा और सच्चे अर्थों में त्यागी बनना पड़ेगा, त्यागी और वैरागी। देखिए, एक सन्यासी का मूल लक्षण, जो उसकी पहचान है, वो त्याग और वैराग्य से होती है, ये उन्हें अपनाना चाहिए।
जी 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 दादा जी, एक विशेष बात, आज के यदि हर एक घर परिवार को देखा जाए तो व्यक्ति उसमें बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। यदि इस सर्वोच्च लक्ष्य की जिसकी बात हम कर रहे हैं कि जीवन का ध्येय ये है, वहाँ रहते हुए ही उसे अचीव करना है, आपको क्या लगता है कितना वक्त वो अपने आत्मचिंतन या परमात्म चिंतन या अध्यात्म के लिए दे, तो ये जो लक्ष्य है जीवन का उसे वो अचीव कर सके?
रोज ही उसे एक घंटा सवेरे, एक घंटा शाम, ये समय सहज रूप से देना चाहिए। बाकी कार्य अपने करने चाहिए नियमित रूप से जो कर रहे हैं। और हम जो कुछ सिखाते हैं और जो भगवान ने हमें सिखाया है, ये कर्म करते हुए ही कुछ अच्छे अभ्यास किए जा सकते हैं, क्योंकि जब मनुष्य कर्म करता है कुछ तो वो सोचता ही है
जी।
अपनी सोच को अगर वो बदल देता है तो कर्म उसकी सुंदर साधना बन जाती है।
बिल्कुल, मतलब घर में रहते हुए भी ये कार्य किया जा सकता है। चलिए भ्राता जी, मैं आपको मेल की ओर लिए चलता हूँ। जीवन की बड़ी ही गुड़ बातों पे चर्चा हुई है, लेकिन वही जीवन की कुछ समस्याएं रहती हैं लोगों की। ये ऐश्वर्या जैन जी हैं भ्राता जी, ये कहती हैं कि मैं 22 साल की हूँ, मुंबई की हूँ, और 4 वर्ष हो गए हैं मुझे विद्यालय से जुड़े हुए। मैंने एक कंपनी अभी शुरू की है, लेकिन जब से मैंने वो शुरू की है मुझे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, और साथ ही साथ उसे हैंडल करना कई बार मुझे थोड़ा सा कठिन लगने लगा है, कई बार स्ट्रेस हो जाता है। और साथ ही जो बिजनेस मैंने शुरू किया है वैसा ही एक बिजनेस अभी साथ में ही लग के किसी और ने शुरू कर दिया है, तो और ज़्यादा चिंता हो गई है कि क्या मैं कम्पीट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। मैं कैसे अपनी इस स्थिति से बाहर आऊँ, कैसे मैं संपूर्ण रूप से सफल हो पाऊँ? कई बार विश्वास तो रहता है कि ठीक है मैं ठीक ठीक कर लूँगी, लेकिन कई बार मन विचलित हो जाता है क्योंकि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने खुद के ऊपर ले ली है। कृपया मुझे सही राह बताएं। ऐश्वर्या हैं मुंबई से, 22 साल की हैं।
काफी कम उम्र में इन्होंने बड़ा चैलेंजेस स्वीकार कर लिया है
जी।
जरूर इन्होंने इस तरह की एजुकेशन भी ली होगी या इनके परिवारों का बैकग्राउंड इस तरह का रहा होगा। फिर भी थोड़ा मैच्योरिटी के बाद ही ये सब करना चाहिए। पहले इन्हें किसी कंपनी में कार्य करके अनुभव प्राप्त करना चाहिए था ताकि मैच्योरिटी आ जाए। फिर भी अब इन्होंने एक कार्य शुरू कर ही दिया है, तो पहली बात मैं कहूँगा जो कंपटीशन की बात इनके साथ है, दूसरे ने इनके साथ ही ऐसा कार्य शुरू कर दिया है, उसमें ये ज़्यादा परेशान ना हो। सबका अपना अपना काम है, सब अच्छे ढंग से आगे बढ़ते हैं, सबका अपना अपना भाग्य है, वो भी आगे बढ़ेंगे और ये भी आगे बढ़ेंगे। इन विचारों से ये अपने मन को निर्बल न करें, अन्यथा क्या होता है बार बार वही सोचने से मन की शक्ति क्षीण होने लगती है और उसका इफेक्ट कार्य की कुशलता पर सीधा सीधा दिखाई देगा
जी।
इसलिए ये अपने कार्य में फोकस करें, इसके जरूर कुछ साथी होंगे, अपनी टीम को बहुत ही मजबूत करें, लविंग करें, ऐसा हो जाए कि वो टीम एक फैमिली बन जाए और सबको लगे कि ये मेरी कंपनी है, मुझे हर कार्य को सफल करना है। ये तो इन्हें फिर ग्राउंड लेवल पे करने पड़ेंगे ये सब कार्य। इरिटेट इनको बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि कार्य कोई भी हम शुरू करते हैं तो बहुत पीसफुल्ली, बहुत लवफुल्ली, अपने साथियों को साथ लेकर, बल्कि उनसे राय विचार विमर्श करके करेंगे तो सब और अच्छे कोऑपरेटिव हो जाते हैं इसमें। उन्हें अप्रिशिएट भी करें, उमंग भी दिलाएं, लेकिन ये अपने अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी भरें। अब सवेरे उठकर बहुत अच्छे अभ्यास करें और जो हम सब कॉन्शियस माइंड की प्रैक्टिस सिखाते हैं, अपनी कंपनी के लिए एक सुंदर विजन बना लें, 6-6 मास का, 1 साल का या 2 साल का, 3 साल का एक फाइनल विजन भी बनाएं और उसको भले 6-6 मास के विजन में डिवाइड कर दें और बिल्कुल देखें, कॉन्फिडेंट हो जाएं कि यहाँ हम पहुँचेंगे, हम उस फील्ड में काम कर रहे हैं, हम हमारी ये पोजीशन हो जाएगी, मैं वहाँ बैठी हूँ। विजन विद कॉन्फिडेंस, इसका बड़ा महत्व है, इसको लोग ड्रीम्स भी कहते हैं। और इसके साथ साथ ये याद रखना है कि ये विजन्स तभी सफल होते हैं, तभी हमें मिलते हैं, जब हमारे पास बहुत अच्छी स्पिरिचुअल पावर हो। लोग इसके लिए टैलेंट्स जो उस फील्ड के लिए आवश्यक हैं वो तो इसका ध्यान तो ये रखते ही होंगे, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल पावर को बहुत बढ़ाना है। पावर ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ माइंड, दो चीज हम कह दें, इससे हमारी बुद्धि बहुत शांत रहेगी और ठीक दिशा में ठीक काम करती रहेगी। तो ये रोज सवेरे उठकर 10 मिनट पहले स्वयं को सुंदर विचारों से चार्ज किया करें। जैसे जो दो सुंदर विचार हैं जिसका इफेक्ट आज तक बहुत सुंदर देखा जा रहा है, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर ऑलमाइटी हूँ, गुड फीलिंग, और सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसका वरदानी हाथ तो मेरे सिर पर है, अब मेरे श्रेष्ठ भाग्य के द्वार खुल गए हैं, मुझे हर कदम पर सफलता होगी, मैं सबसे आगे जाऊंगी, कदम कदम पर उसकी गाइडेंस मेरे साथ है, उसका कोऑपरेशन मुझे प्राप्त है, मुझे कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। इस तरह उमंग उत्साह के एनर्जी देने वाले संकल्प सवेरे पहले 10 मिनट में इनको करने हैं, और ऐसे ही उसी टाइम 1 घंटा ये अच्छा राजयोग मेडिटेशन कर लें। ये मेडिटेशन की शक्ति बहुत प्रबल है, इसका इफेक्ट, इसके वाइब्रेशंस पूरे कार्य पर चलते हैं, और कार्य में आने वाले जो विघ्न बाधाएं हैं वो इससे नष्ट होने लगती हैं। ऐसा ये करें तो बिल्कुल इन्हें कोई नहीं रोक पाएगा,
बिल्कुल, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज होता ये है कि शुरुआत हमने भी की और बगल में एक पड़ोसी भी आके वही काम शुरू कर देता है,
और उनकी आयु भी छोटी है ना, बड़ी बात है।
जी जी, लेकिन एक अच्छी बात है व्रता जी की 4 साल से विद्यालय से जुड़ी है, तो जो आपने प्रैक्टिसेस बताए हैं
वो
निश्चित रूप से करेंगे और सफलता मिलेगी।
तब तो इनके साथ बड़ा क्या, सबसे बड़ा है सुप्रीम पावर है, जिसके साथ होने के बाद और किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ती, वो इन्हें साथ दे रहा है, देगा तो सब कार्य सफल होगा।
बिल्कुल, चलिए हमारी भी शुभकामना रहेगी ब्रता जी ऐश्वर्या के लिए। ये अच्छा गर्व की भी बात है कि हमारे देश की जो न्यू जनरेशन है, बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन से,
ये इनके बहुत बड़े साहस की बात है, और डेफिनेटली हम इनको अप्रिशिएट करते हैं।
जी जी, हमारी भी शुभकामना इनके लिए रहेगी ब्रता जी, और आज के सदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बात आज जीवन के मूल्य की शुरू हुई थी, और सचमुच बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना जब हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन जीवन हम कैसे जी रहे हैं, क्या इस विषय पे हम कभी विचार करते हैं? आपने भी देखा होगा कई बार जो धान की मिसाई भी होती है ना, उसके लिए भी ऐसा किया जाता है, खूंटा गाड़ दिया जाता है, बहुत सारे बैलों को बांधा जाता है, फिर बैल चारों ओर घूमते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि क्या आज हमारा जीवन कोल्हू के बैल की तरह नहीं हो गया है? यदि एक गृहिणी को देखा जाए, सुबह उठती हैं, घर का सारा काम करती हैं, खाना बनाती हैं, सबको खिलाती हैं, सब बर्तन सफाई करती हैं, रात को सो जाती हैं, फिर उठती हैं, फिर वही कार्य करती हैं, यद्यपि बहुत ही महान कर्तव्य है, लेकिन फिर भी यदि देखा जाए तो जीवन शायद इसी धूरी में घूमते घूमते ही अंत हो जाता है। किसी कर्मचारी को देखें, किसी व्यवसायी को देखें, किसी को भी देखें, आप पाएंगे कि ज्यादातर हम एक धूरी में घूमते 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 जीवन के अंत तक पहुंच जाते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते। मुझे विचार ये आता था कि ईश्वर ने यदि हमें संसार में भेजा है तो क्या इसी के लिए भेजा है कि हम जन्मे हैं, थोड़े बड़े हुए, हमारा विवाह हुआ, हमारे 2-4 बच्चे हुए, उन्हें हमने पाला पोसा और जीवन का अंत हो गया। यही कार्य तो जीव जंतु भी करते हैं, कहीं कहीं पेड़ पौधों में भी ये चीजें दिखाई जाती हैं। तो यदि जीव जंतु, पेड़ पौधे और हम में ठीक यही चीज है, तो हमें अलग क्या है? यदि हम इंसान हैं तो कुछ तो अलग होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि हम समाज के लिए, संसार के लिए कुछ करके जाएं, कुछ ऐसा जिससे हम जीवन को भी समझ पाएं, अपने आप को भी समझ पाएं, संसार को समझ पाएं और इसे कुछ दे के जाएं। बहुत ही गहन बात है ना, आप भी विचार कीजिएगा कि हम अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं, कैसे जिया जा सकता है, कैसे जीना चाहिए और इसका सर्वोच्च उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या मुझे कुछ प्रयास, कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए। बहुत ही गहन और सुंदर विषय है मित्रों, चिंतन का विषय है, इस पर चिंतन अवश्य कीजिएगा। कल्पना आपसे इसी शो में इसी समय मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।